Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Puram Ekadashadvara Majasya Vakra Chitasaha अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते एतत् वैतत्। कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की द्वितीय वल्ली का प्रथम मंत्र है। आत्मतत्व के संदर्भ में ज्ञानी और अज्ञानी की अनुभूति बड़े ही सूक्ष्म और रहस्यपूर्ण दृष्टांतों के द्वारा बालक नचिकेता को समझाने का प्रयत्न किया। यहां केवल जानना है, जाना नहीं है। आत्मा ज्ञान का विषय है, कृति का विषय नहीं है। कृति का आधार, कर्म का आधार, परिवर्तन का आधार अनात्मा है। आत्मा परिवर्तन का आधार नहीं, केवल ज्ञान का विषय है। आत्मा को पाना नहीं है, केवल जानना है। जो वस्तु दूर होते हैं, दूसरे काल में होते हैं, दूसरे रूप में होते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्रिया की जरूरत है। और जो क्रिया होती है वो काल सापेक्ष होती है। जैसे कोई दूसरे देश में वस्तु है, आपको हरिद्वार जाना है, वृंदावन जाना है, तो हरिद्वार वृंदावन यहां नहीं है, बहुत दूर है। हमारे में और हरिद्वार में काल की दूरी है, देश की भी दूरी है। वहां तक पहुंचने के लिए समय की जरूरत पड़ेगी। क्रिया के बिना हरिद्वार तक जाना संभव नहीं है। अनात्म पदार्थों की दूरी क्रिया के द्वारा हम दूर करते हैं और ये काल सापेक्ष है। इसलिए नवीन न्यायिकों ने एक घोषणा कर दी, जन्या नाम जनक कालो जगताम आश्रयो। ये काल जन्यों का भी जनक है। जितने भी जन्य पदार्थ हैं, कार्य अनात्म, संपूर्ण पदार्थों का वो जनक है काल, और वो संपूर्ण जगत का आश्रय है। उसको रहने के लिए, पैदा होने के लिए, बनने के लिए, मिटने के लिए काल की जरूरत पड़ती है। इसलिए कई बार आदमी बोलता है ना कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। माने आदमी को मरने के लिए भी समय चाहिए। जैसे पैदा होने के लिए समय चाहिए, वैसे मरने के लिए भी समय चाहिए। ये मरना समय को आधार बनाकर मरता है, लेकिन आत्मा में समय नहीं है। आत्मा की अनुभूति के लिए समय की जरूरत नहीं है और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने निकट हम अपने से हैं उतना दुनिया में कोई नहीं है। और जब आत्मा बोलते हैं तो आत्मा का अर्थ कोई परोक्ष नहीं है। आत्मा मने हम स्वयं, आत्मा मने अहम, इस प्रतीति का विषय। जब आप बोलते कि मैं, इस मैं का अर्थ क्या है, तो वेदांत कहता है कि मैं का अर्थ शरीर नहीं है, मैं का अर्थ इंद्रियां नहीं है, मैं का अर्थ प्राण नहीं है, मैं का अर्थ आत्मा है, आत्मा। और एक वेदांत की बहुत सुंदर गहरी बात है, यहां कुछ होना नहीं है, यहां केवल जानना है। परम पूज्य महाराज श्री को किसी ने कहा कि ब्रह्मज्ञान होने के बाद क्या होता है, आत्मज्ञान होने के बाद क्या होता है। महाराज ने कहा कि आत्मज्ञान होने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं है। यहां होना नहीं है, यहां जो है, जो आपके प्रतीति का विषय है, ज्ञान का विषय है, उसको नहीं होना है। बस माने हम अन्नमय कोष, ये जो शरीर है अन्नमय कोष, इस अन्नमय कोष को समझते हैं। मैं का आधार हमने बना लिया अन्नमय कोष, हम नाम बता देते हैं, हम अपना नाम बता देते हैं कि हम भाई गिरीश भाई हैं। तो ये गिरीश भाई नाम किसका है? ये आत्मा का है कि ये अन्नमय कोष का है? अन्नमय कोष का है। आप बोलते कि मैं बहुत ज्यादा बुद्धिमान हूं, तो बुद्धिमान होना किसका है? ये आत्मा का भाव है कि बुद्धि का भाव है? बुद्धि का भाव, विज्ञान में कोष। हम बड़े चंचल हैं, बड़े विक्षिप्त हैं। ये चंचलता और विक्षिप्तता का आधार कौन है? मन है, ये मनोमय कोष है। हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, ये भूख प्यास प्राणों का धर्म है। और आप बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो, आहा हा आनंद आ गया। अभी आप बोल रही थी ना कि आनंद आ गया, कल आप नहीं आ पाए, आपकी याद की हम कल जल्दी, थोड़ा सूचना मिली कि जल्दी कर लेना, तो हम 7 बजे निपटा लें शाम को, और आप हवन में तो थे ही। आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। तो बहुत आनंद कहां का भाव है? ये आनंदमय कोष है। ये पांचों कोष हैं जो हमारे अनुभव का विषय बनते हैं, पांचों कोष। मैं लेकिन वेदांत कहता है कि पांच कोष आप नहीं हैं। तो केवल जो आप मानते हैं ना, उसको नहीं मानना है, और कुछ नहीं है। पंचकोश विवेक बोलते हैं, बहुत विस्तृत रूप से पंचदश्यादि ग्रंथों में इसका प्रतिपादन है। पंच ये कोश और इसका जो विवेक है, यही है, मैं नहीं हूं। जो है, जो हम समझते हैं, उस समझ को अपने को हटा देना है। भैया ये नहीं हूं, मैं पंचकोश नहीं, बात खत्म। और एक महात्मा जी थे, स्वामी वामदेव जी महाराज, आप जानते होंगे, बड़े विरक्त महात्मा, अपने आश्रम में रहते थे। महाराज जी बहुत मानते, महाराज जी कहते थे कि किसी साधु को बांध के रखना चाहिए, साधु को बांध के रखना चाहिए। बोले ये बांध के रखने वाले साधु। और महाराज जी ने उनसे संकल्प दिलवाया था कि 6 महीने आश्रम में रहेंगे, 6 महीने बाहर रहे, और वो आजीवन पालन करते रहे। आश्रम में आते थे, वो बोलते थे कि जरूरत नहीं है मेरी, लेकिन महाराज जी की आज्ञा मान के मैं 6 महीने यहां रहता हूं, 6 महीने बाहर रहता हूं। एक बार ऐसे मैंने पूछा कि महाराज, वेदांत का साधक चिंतन जब करता है तो उसको अपने में अनुभव कैसे होते हैं? और वेदांत सर्वोच्च साधना है, इसलिए इसका दृष्टांत देके बताया, सारे शास्त्र श्रृगाल की तरह, गीदड़ की तरह, और वेदांत जो है शेर की तरह। एक बार शेर बोल दे और सारे जंगल के प्राणी सहमे जाते हैं, और सारे प्राणी फिर कितने भी अपने आप में वो साहसी क्यों ना हो, लेकिन जैसे शेर जब तक दहाड़ता नहीं तभी तक है उनकी दहाड़, और शेर की दहाड़ सुनी और पूंछ दबा के भागना शुरू कर देते। इसलिए वेदांत केसरी बोला है, वेदांत को केसरी बोला है। और इस प्रेमपुरी का आपका सौभाग्य है कि हम सब लोग केसरी हैं। हम लोग केसरी है, हम लोमड़ी नहीं है, श्रृगाल नहीं है, वेदांत केसरी। और एक बात जब दहाड़ता है, ये सर्वोच्च शास्त्र है, सारे तर्क वहां छिन्न भिन्न हो जाते हैं। आप दुनिया में जितनी भी साधना करेंगे, उन संपूर्ण साधनाओं का फल समाहित है वेदांत में। आपको वेदांत की अनुभूति हुई, माने सारे शास्त्रों का उसमें आ गया सार, सारे शास्त्रों का सार आ गया। भगवान ने भी गीताजी में बोला है, ज्ञाने परिसमाप्यते सर्वा सर्व कर्माखिलम पार्थ, अखिल कर्मों का जो सार तत्व है बोले ज्ञान में आ जाता है, सारे कर्म अब करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये वेदांत अनुभव क्या है आखिर? तो वामदेव जी महाराज ने बहुत अनुभव की बात बता दी। उन्होंने कहा कि जब मैं वेदांत का चिंतन किया करता था, पंचकोश निराश, पंचकोश विवेक, ये सारे जो साधन है ना, ये सोचने के लिए हैं, सोचने के लिए, एक नई कल्पना पैदा करने के लिए, पुरानी कल्पना को मिटाने के लिए एक नई कल्पना करनी पड़ती है, एक कल्पना दूसरी कल्पना को मिटा देती है। आप एक कल्पना है, ये पांच कोश मैं हूं, ये भी तो कल्पना है, और इस कल्पना को मिटाने के लिए एक नई कल्पना कीजिए, और वो नई कल्पना ही तो आपका निधिध्यासन है, और क्या है? आपको चिंतन में लेना चाहिए। वो कहे कि स्वप्न पदार्थ, जैसे स्वप्न, वो कहते थे कि मैं स्वप्न का मास्टर हूं, ऐसा बोलते थे। मेरे को समझ में नहीं आया स्वप्न का मास्टर क्यों बोले, हम लोग तो बोलते आत्मा का मास्टर हूं, मैं ब्रह्म का मास्टर हूं, लेकिन वो बोले मैं स्वप्न का मास्टर हूं। उन्होंने कहा कि मैं स्वप्न का चिंतन करता हूं बैठ करके, स्वप्न क्या है, और जब स्वप्न का चिंतन करता हूं तो जागृति भी मेरे को स्वप्न मालूम पड़ती है। आप स्वप्न का अनुभव करते हैं, स्वप्न जैसी वेदांत के लिए सहायक दूसरी कोई चीज नहीं है। एकमात्र अनुभव का दृष्टांत है कि जहां पर प्रतीति है लेकिन प्रतीति में सत्यत्व नहीं है, जहां वस्तुओं की दृष्टि है लेकिन उस दृष्टि में सत्यत्व नहीं है, और वो केवल दृष्टि मात्र है, वहां सृष्टि नहीं है, और स्वप्न पदार्थों की अज्ञात सत्ता भी नहीं है, वो ज्ञातिक सत्य है। ये वेदांत का सर्वोच्च सिद्धांत है। आप स्वप्न में अनुभव करते हैं वो ज्ञातिक सत्य, ज्ञातिक सत्य का अर्थ है केवल दिखते तभी तक होते हैं। अब जैसे कि ये माइक है, ये ज्ञातिक सत्य नहीं है, आपको ये दिखाई दे रहा है तब भी है, और जब नहीं दिखाई देगा तब भी होगा। अभी आप यहां दिखाई दे रहे हैं और सत्संग के बाद आप नहीं दिखाई देंगे, आप दिखाई दे रहे तब भी हैं, और आप दिखाई नहीं दे रहे हैं तब भी हैं। आपका अस्तित्व अपने घर में होगा, ऑफिस में होगा, अन्यत्र कहीं होगा, तो आप ज्ञात एक सत नहीं है, आप ज्ञात में भी सत हैं और अज्ञात में भी सत हैं। और वेदांत का सिद्धांत कहता है कि सारी दुनिया ज्ञात एक सत है, हमारा अनुभव ऐसा नहीं है, लेकिन वेदांत कहता सारी चीजें ज्ञात एक सत है। इसका उदाहरण कहां पर है? बोले स्वप्न पदार्थ, स्वप्न पदार्थ ज्ञात एक सत है, आपको दिखाई दे रहे थे तभी थे, और जब दिखाई नहीं देंगे तब भी नहीं होंगे। आपको दिखाई दे रहे तब भी नहीं थे, और नहीं दिखाई देंगे तब भी वो नहीं है। आप भोजन कर रहे थे, बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया भंडारा स्वप्न में कर रहे थे, और उस समय भी आप नहीं कर रहे थे, और जब नहीं कर रहे होंगे तब भी आप नहीं कर रहे होंगे। आप स्वप्न में केवल मालूम हो रहे थे, स्वप्न में केवल मालूम हो रहे थे कि हम भोजन कर रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, वहां क्रिया मालूम पड़ रही थी, क्रिया का आधार ये शरीर मालूम पड़ रहा था, क्रिया का आधार वहां समय भी मालूम पड़ रहा था, स्वप्न में समय भी मालूम पड़ता है, बहुत मजेदार बात, वहां समय भी मालूम पड़ता है, आप बोर भी हो जाते हैं स्वप्न में, आप रोते भी हैं, वहां हंसते भी हैं, बहुत सारी चीजें आप जो जागृति में नहीं करते वो भी स्वप्न में करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ होता नहीं है, वहां केवल होने की तरह मालूम पड़ता है। आपको गीता जी का पांचवा अध्याय समझना है तो आप स्वप्न से समझ सकते हैं। पांचवे अध्याय में भगवान ने कहा, पश्यें श्रृण्वन स्पृशें जिघ्रन नश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिशन उन्मिशन अपी। भगवान ने कहा ये सारी चीजें मालूम पड़ रही हैं, नैव किंचित करो मीति, मैं कुछ करता नहीं। माने कर्ता होने का भाव प्रतीत होने के बाद भी नैव किंचित करो मीति। और ये बात आपको समझना हो तो आप समझ लीजिए, स्वप्न में आप वहां देख रहे थे फिर भी आप नहीं देख रहे थे, क्योंकि वहां देखने वाला ही नहीं है और देखने का विषय पदार्थ भी नहीं है। आप बहुत बड़ी लंबी ट्रेन में बैठ के जा रहे थे, आप हरिद्वार जा रहे थे, बहुत लंबी ट्रेन थी, लेकिन आपको कोई पूछे कि वहां ट्रेन थी क्या, आप बोलेंगे नहीं थी। आप जा रहे थे कि नहीं, हाँ बोले जा तो रहे थे, तो हम पूछेंगे भैया गए कि, अरे बोले नहीं। माने जाते हुए भी नहीं जा रहे थे, देखते हुए भी आप नहीं देख रहे थे, वहां खाते हुए भी आप नहीं खा रहे थे, ट्रेन में आप खा रहे थे कि नहीं, हाँ फिर भी नहीं खा रहे थे। वो पांचवें अध्याय का जो भी तत्व है आप स्वप्न में समझ लीजिए, नैव किंचित करो मिति, ये स्वप्न के बिना संभव नहीं है, स्वप्न समझे बिना संभव नहीं है। वहां देश के अभाव में देश की प्रतीति, वहां समय नहीं है, एक क्षण में आप बहुत लंबा चौड़ा स्वप्न देख लेते हैं, बहुत छोटे से क्षण में। वहां समय के अभाव में समय की प्रतीति, देश नहीं है वहां, लेकिन देश की प्रतीति है। वहां वस्तु नहीं, वस्तु की प्रतीति है, और इसी को तो स्वप्न बोलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें, सारी गीता जी आपको समझना है तो आप स्वप्न में समझ लीजिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान के लिए स्वप्न सुख दुख सब समान हो जाते हैं स्वप्न में, और कुछ नहीं है। ये सारी दुनिया जो है ना, स्वप्न हुए बिना ये गीता जी समझ भी नहीं आएगी। आप स्वप्न में बहुत कुछ खो दिए और जग गए, और जगने के बाद आप बैठ करके रोना शुरू कर देते हैं, अरे हमने तो बहुत कुछ खो दिया। नहीं नहीं नहीं, अथवा आपने बहुत कुछ पाया स्वप्न में तो आप जागृति में बैठ के आनंद मनाते हैं? नहीं, वहां मिला क्या और वहां खोया क्या, वो आपकी दृष्टि है, वो आपकी सृष्टि है, वो आपकी कल्पना है। और एक बार यदि स्वप्न को स्वप्न आपने जान लिया, बात खत्म हो गई, सारी गीता जी समझ में आ गई, ये जागृति वैसे ही मालूम पड़ जाए। वामदेव जी महाराज जी कहते थे कि मैं स्वप्न पर चिंतन करता हूं और वो जागृति मेरे को स्वप्न मालूम पड़ती है, ये जागृति स्वप्न हो जाती। बात तो केवल समझ की है, बात तो केवल समझ की, यहां कुछ करना नहीं है। इसलिए ज्ञान को सर्वोच्च माना है वेदांत ने, ज्ञान को सर्वोच्च इसीलिए माना, यहां कुछ नहीं करना, यहां केवल समझना है। आपने समझ लिया क्या है, ये स्वप्न है ये आपने समझ लिया है, और ये जागृति एक स्वप्न है आपको समझना है। और एक बार आपने समझ लिया बात खत्म हो गई, समझ के साथ परिवर्तन शुरू हो जाता है। ज्ञान हमारे जीवन की क्रांति है, ज्ञान हमारे जीवन का चरित्र है। एक बार समझ में आ जाए, केवल एक बार समझ में आ जाए, समझ के साथ हम होना शुरू हो जाते। राजा जनक को मालूम पड़ा, बहुत अद्भुत दृष्टांत है। राजा जनक के जीवन का यह अद्भुत दृष्टांत, उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न भी बड़ा मजेदार है। राजा और वो स्वप्न देख रहे थे कि मैं भिखारी हूं, मैं राजा है और वो स्वप्न देख रहे मैं भिखारी हूं, और वो भीख मांग रहे थे, बहुत भूखे प्यासे दीनहीन। लेकिन भिक्षा नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से उन्हें दो मुट्ठी चावल मिले और एक मटका मिला, लकड़ियां जलाकर आग जलाकर एक चूल्हा बनाकर उसके ऊपर मटका रखा है और आग जला के बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न, जैसे बहुत बड़ी संपत्ति मिली हो। वो कल्पना कर रहे थे, ओहो हो चावल पकेगा, मैं खाऊंगा, आनंद मनाऊंगा। वो भूल गए, वो भिखारी, वो दारिद्र्य, वो दैन्य, वो दुख सब भूल गए, आनंद मना रहे हैं। स्वप्न में भी आनंद मना रहे हैं। और उसी समय दो लड़ते हुए सांड पहुंच जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं उसको बचाने की, लेकिन वो बचा नहीं पाते। दोनों सांडों के बीच में उनकी मटकी आ जाती है, फूट जाती है, बिखर जाता है चावल, और वहां बैठ करके वो रोने लगते हैं। राजा जनक बैठ करके रो रहे हैं वहां, और वो इतना रोए इतना रोए, रोते 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 वहां झपकी लग गई। वहां थोड़ा स्वप्न में उनको झपकी लगी, और जैसे झपकी लगी और इधर जग गए, और उतने में ही उनकी जागृति संदिग्ध हो गई। जैसे वो जगे और जगते हुए उन्हें मालूम पड़ा, ओहो ये तो सोने की शैया, खाने पीने की सारी चीजें रखी हैं, राजमहल में है, पूर्ण ऐश्वर्य में है, वहां किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन वो सोचने लगे, सोचने लगे, वो भिखारी सो रहा था। यही सी क्रांति है, वो भिखारी सो रहा था तो कहीं ये भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। राजा जनक की जागृति स्वप्न ऐसे नहीं हुई है, बहुत गहरी अनुभूति थी वहां। वो सोचने लगे, जैसे एक राजा जनक भिखारी बनने का स्वप्न देख सकता है, तो एक भिखारी भी राजा जनक बनने का स्वप्न देख सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं। वो भिखारी सो गया था और वो स्वप्न देख रहा हूं कि मैं राजा जनक हूं। ये राजा जनक होना भिखारी का स्वप्न तो नहीं है, ये राजा जनक होना भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। आज हम लोग यहां बैठकर सत्संग कर रहे हैं, किसी का स्वप्न भी तो हो सकता है, आप जानोगे कैसे। और इतने मात्र से उनकी जागृति संदिग्ध हो गई और वो यही सोचने लगे, ये सत्य कि वो सत्य। वहां पर हम शाब्दिक रूप से ऐसा ही बोलते हैं, ये सत्य कि वो सत्य। उनको यही कहना था, जैसे एक राजा जनक का भिखारी बनना स्वप्न है, वैसे ये राजा जनक बनना क्या भिखारी का स्वप्न तो नहीं है। और उसके बाद उनमें क्रांति आई, यही तो जिज्ञासा है, यही तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा है, यही तो मुमुक्षा है, यही तो साधक का भाव है। और इसी बात को योग दर्शन में विक्षिप्त अवस्था बोला है, और ये साधना की अवस्था है, ये विक्षिप्त अवस्था साधना की अवस्था है। आदमी मूढ़ है, उसको नहीं मालूम, मूढ़ है माने उसको नहीं मालूम क्या है सत्य, और वो आराम से जिंदगी गुजर रही है। जब वो राजा थे तब भी, और वो राजा नहीं होते, एक सामान्य आम आदमी होते तब भी वो बहुत आनंदपूर्ण जीवन में थे, लेकिन अवस्था बदल गई, अब वो संदिग्ध हो गई, वर्तमान संदिग्ध हो गया। जिसको सत्य समझते थे वो भ्रम टूटने लगा, और वैसे उसकी उनके जीवन में विक्षिप्त अवस्था आ गई। और ये विक्षिप्त अवस्था स्थिर की अवस्था नहीं है, ये विक्षिप्त अवस्था विक्षेप। अब वो परेशान हो गए, परेशान हो गए, शांति खो गई, और वो एक ही सोचने लगे, वो सत्य कि ये सत्य, वो सत्य कि ये सत्य। माने वो जो भिखारी था वो सत्य है कि राजा जनक बना हूं ये सत्य। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, किसी को भी समझ में नहीं आया, वो प्रश्न ही समझ में नहीं आया। और वो शास्त्र के बहुत सारे उत्तर देने की कोशिश भी कर रहे थे लोग, लेकिन एक तत्वदर्शी महापुरुष पहुंचे अष्टावक्र, और जैसे उनके सामने प्रश्न रखा ये सत्य कि वो सत्य, और वो समझ गए, उनके अंतर मन तक पहुंचे उस प्रश्न की सीढ़ी बनाकर, और उन्हें कहा कि राजन न ये सत्य है और न जागृति सत्य है और न स्वप्न सत्य है। जिसको तुम जागृति कहते हो ये जागृति भी एक स्वप्न है, मालूम पड़ता है। और उसके बाद फिर राजा जनक के जीवन की विक्षिप्त अवस्था ब्रह्मज्ञान में बदल गई। उन्हें मालूम पड़ा ये तो स्वप्न है, सारी दुनिया स्वप्न है, ये मेरी दृष्टि है और इस पदार्थों का केवल अस्तित्व मेरी दृष्टि में है, बाहर के पदार्थों का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इनकी अज्ञात सत्ता नहीं है। आप संभालोगे अज्ञात में कि ज्ञात में? आप चिंता किसकी करोगे जहां है ही नहीं, और इन पदार्थों के अज्ञात में तो सत्ता ही नहीं है। एक बड़ी गहरी बात है, इसको आप आभासवाद बार बार श्रवण करते, आभासवाद अक्सर वेदांत का एक शब्द है, जहां भी आप प्रक्रियात्मक वेदांत श्रवण करते हैं एक शब्द सुनते आभासवाद। ये आभासवाद क्या है? ये बहुत गहरी अनुभूति है, ये महात्माओं की बहुत गहरी अनुभूति है, उसके लिए शब्द दिया आभासवाद, और बहुत सरल है। जैसे हम किसी भी पदार्थ को देख लेते हैं, ये देखना क्या है,